जय वैष्णव ठाकुर Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर शराबी मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ सम्मोह करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। श्रीयो राजा या अपने पिता के हत्यारे गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं और वे इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करो। तो आज का जो श्लोक है, न निष्कृते विदिते ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यात्यघवान्मतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदारते तदुत्तम श्लोक गुणोप लंभकम् न निष्कृते रुदिते ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यात्यगवान्वतादिभिः यता हरे नाम पदे रुदारते तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम् न निष्कृते हृदि ते ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यात्यगवान्वतादिभिः यता हरेर्नाम पदेरुदारते तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम् तथा विशुद्ध्यात्यगवान्वतादिभिः यथा हरेर्नाम पदे शब्दार्थ न नहीं निष्कृते प्रायश्चित की विधियों द्वारा उदिते निर्धारित ब्रह्मवादिभिः मनु जैसे विद्वान पंडितों द्वारा तथा उस सीमा तक विशुद्धते शुद्ध हो जाता है अघवान पापी व्यक्ति व्रतादि भी व्रत तथा अन्य अनुष्ठानों का पालन करने से यथा जिस तरह हरे भगवान हरि का नाम पदे नाम के अक्षरों से उदारते उच्चारित ततः वह उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणः दिव्य गुणों का उपलम्भकम् किसी को स्मरण दिलाते हुए अनुवाद और तात्पर्य मिस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के तो अनुवाद ध्यान से सुनिए। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है किंतु ये भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं तथा साध सामग्री का स्मरण कराता है। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर की टीका है कि भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है। जो कठोर कठोरतर या कठोरतम पाप कर्मों के प्रायश्चित के वैदिक कर्म कांडों से इसे पृथक करने वाला है। 20 प्रकार के धार्मिक वाङ्मय हैं जो धर्म शास्त्र कहलाते हैं यथा मनु संहिता पराशर संहिता इत्यादि। किंतु यहाँ पर बल दिया गया है कि यद्यपि मनुष्य इन शास्त्रों के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने से सर्वाधिक पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है किंतु इनसे पापी व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर भगवान नाम का एक बार भी कीर्तन करने से मनुष्य न केवल बड़े से बड़े पापों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाता है अपितु ये कीर्तन उसे उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति करने के पद तक उठाता है। इस तरह मनुष्य भगवान के स्वरूप गुण तथा लीलाओं का स्मरण करके उनकी सेवा करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं यह सब एकमात्र भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से संभव है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, जिसे वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे भगवान के पवित्र नाम के जप से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने और भाव विभोर होकर नाचने की विधि इतनी सरल तथा भव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हमने जो संकीर्तन आंदोलन चलाया है वह समस्त पाप फलों से शुद्ध होने तथा तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि प्रदान करता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ इस श्लोकों में या इस अध्याय में वर्णन आया है कि किस प्रकार से विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार हो रहा है और भगवान के जो पवित्र नाम है उसकी महिमा को स्थापित किया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद अपने इस तात्पर्य में कहते हैं कि वास्तव में ये जो कृष्ण नाम है यही एक सारग्राही वस्तु है, क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों को प्रगाढ़ता से पकड़ लेता है तो स्वाभाविक रूप से नाम को ग्रहण करने मात्र से नामे प्रस्फुटित हय रूप गुण लीला, नाम के द्वारा ही उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं उसके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। तो लेकिन प्रश्न उठता है कि ये जो भगवान नाम है वो कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो पंचांग भक्ति की शिक्षा सनातन गोस्वामी को प्रदान करते हैं तो उसमें भगवान के भक्तों के संग का वर्णन करते हैं। पंचांग भक्ति क्या है? नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण और मथुरावास, अर्चा विग्रह का श्रद्धा के साथ सेवा और भगवान के भक्तों का संग। तो ये सारी चीजें, हर एक चीज अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इनका अल्प मात्रा में संग करने से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इतनी शक्तिशाली है, इतनी सामर्थ्यवान है कि व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत कर देती है। लेकिन हमारे लिए भगवान के भक्तों का जो संग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों का संग नहीं होता। कृष्ण नाम बहुत शक्तिशाली है। शुकदेव गोस्वामी श्रीमद भागवतम के अंत में कहते हैं कले दोषो निधि राजन अस्ति एक महत गुना कीर्तना देव कृष्णश मुक्त संघ परम ब्रज। वो कहते कि ये जो कलयुग है वो दोषों का सागर है, लेकिन उसमें एक चीज बहुत मूल्यवान है और वो है कृष्ण का पवित्र नाम। कृष्ण के पवित्र नामों का भक्तों के संग में आकर कीर्तन करना। तो ये जो संकीर्तन शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, लेकिन हमारे लिए उसका उच्चारण करना अत्यधिक कठिन है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम्ही कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, एकाकी आमार नाहे पाए बल हरि नाम संकीर्तने। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारी भावना तो ऐसी होनी चाहिए, हमें तो इस कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए रोना चाहिए कि मैं अकेला हूं, एकाकी हूं, निर्बल हूं, मुझ में कृष्ण नाम का उच्चारण करने का सामर्थ्य या शक्ति नहीं है। हाँ, तो वो शक्ति और सामर्थ्य कहां से आ सकता है? भगवान के जो महान भक्त है उनका यदि हम गंभीरता से आश्रय ग्रहण करते हैं और उन भक्तों के चरणों में गिड़ गिड़ाते हैं और उनसे यही दया की भीख मांगते हैं, क्या? एकाकी आमार नाहि पाए बल हरि नाम संकीर्तने, मुझ में अकेले में शक्ति नहीं है इस कृष्ण नाम का उच्चारण करने में। कभी कभी हम अपने स्वयं के जीवन में देखते हैं ये जो मिड बैग है बहुत हल्की है, लेकिन जैसे ही मंगल आरती के बाद का समय शुरू हो जाता है उसका वेट क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। हाथ में लेने की हमारे अंदर इच्छा नहीं होती, हरे नाम को जप करने की इच्छा होती नहीं है। तो पूरे दिन में देखा जाए एक भक्त पूरे दिन बहुत सुपर एक्टिव हो सकता है, लेकिन बहुत कम भक्त दिखाई देते जो कब एक्टिव होते हैं? जपा के समय में, कृष्ण नाम का उच्चारण करने के समय में, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है। और हमें वास्तव में क्या चाहिए? भगवान के महान भक्तों की कृपा की आवश्यकता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा एकाकी आमार नाहि पाए बल, अकेले में सामर्थ्य नहीं है, तुम्ही कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, आप कृपा कीजिए और कृष्ण नाम रूपी ये जो धन है वो मुझे प्रदान कीजिए। तो इसलिए वास्तव में भक्तिमय जीवन आधारित है कृपा के ऊपर, और वो कृपा हमें प्राप्त होती है किनसे? महान वैष्णवों से। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण जिनको कहा जाता है करुणा सिंधु, करुणा के सागर है, लेकिन वही सागर जब अपनी सीमा का उल्लंघन करता है तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को देखते ही रूप गोस्वामी दंडवत प्रणाम करते हैं और उनको कहते हैं नमो महावदन्याय, हे चैतन्य महाप्रभु आप सबसे अधिक दया दयालु हो, सबसे अधिक दानी हो, वदान्याय हो। यदि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहे कि अरे मैं तो सन्यासी हूं कैसे कहते हो आप मुझे सबसे बड़ा दानी, तो रूप गोस्वामी कहते आप इस जगत का सर्वसाधारण दान नहीं दे रहे हो, आप क्या दान में दे रहे हो? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण का जो प्रेम है वो आप वास्तव में प्रदान कर रहे हो। इसी कारण से रूप गोस्वामी ने जब ये कहा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, आप साक्षात कृष्ण हो लेकिन आप एक भक्त का जो रूप है या भक्त की जो भावना है उसको आपने अंगीकार किया है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक दयालु हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण से भी अत्यधिक दयालु उनके भक्त हैं। और जब भगवान अपनी दया इस बद्ध जगत के जीवों पर देना चाहते हैं तो भक्त का रूप धारण करते हैं। इसलिए प्रभुपाद के आगे हम लिखते हैं या पढ़ते हैं क्या? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, कृष्ण की कृपा जब मूर्ति का रूप धारण करती है हमारे सामने प्रकट होती है तो उनके शुद्ध भक्त हैं। इसी कारण से हमें सदैव अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हेतु भगवान के भक्तों की सहायता और भगवान के भक्तों की कृपा की परम आवश्यकता है। तो आज वो दिन है जिसके द्वारा हम इन महान आचार्यों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो
तो नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में कहते हैं, तांदेरा चरण सेवे भक्त सनेवास, जनमे जनमे हाय यही अभिलाष। मैं क्या चाहता हूं, तांदेरा चरण सेवे, तांदेर मीन्स जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, इस परंपरा के महान भक्त हैं, उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूं। और हे कृष्णा, आपके भक्तों के संग में मैं सदैव निवास करना चाहता हूं। जन्मे जन्मे है, चाहे मुझे इस संसार में बारंबार जन्म लेने क्यों ना पड़े, हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपके भक्तों के संग में निवास करना चाहता हूं। और ये जो पूर्ववर्ती आचार्य गण है, उनकी सेवा करना चाहता हूं। तो आज ऐसे महान आचार्यों का आविर्भाव और तिरुभाव है। एक तो है विष्णु प्रिया देवी, जो चैतन्य महाप्रभु की अंतरंगा शक्ति या भार्या है, पत्नी है, जिनका आज आविर्भाव है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शायद उनका तिरुभाव है। तिरुभाव, हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरुभाव है पुंडरिक विद्यानिधि, और रघुनंदन ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी का क्या है, आविर्भाव है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो आविर्भाव और तिरुभाव है, उस दिन इन महान वैष्णवों को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, अन्यथा इन आचार्यों तक उनकी कृपा के लिए हमें परंपरा का आश्रय ग्रहण करना होता है। और आज के दिन इन वैष्णवों को हम डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं और डायरेक्ट उनकी कृपा को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। तो अलग अलग इन आचार्यों का जो जीवन चरित्र है, उनसे जो शिक्षा है, कुछ समय के लिए हम प्रयास करेंगे संक्षिप्त में इनके बारे में बोलने का, अपने स्वयं की शुद्धि हेतु। तो सबसे पहले चर्चा हम करेंगे विष्णु प्रिया ठाकुरानी या विष्णु प्रिया देवी के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में अवतरित होते हैं निमाई पंडित के रूप में, अपनी कई सारी लीलाएं प्रकट करते हैं, विशेष रूप से उनका जो विद्या विलास की लीलाएं हैं। और कुछ समय के बाद वो विवाह करते हैं लक्ष्मी प्रिया से। और एक बार जब निमाई पंडित बंगाल जाते हैं और वहां जाकर लक्ष्मी प्रिया देवी यहां नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित के विरह में अपने देह को त्याग देती हैं। और जब निमाई पंडित वापस आते हैं नवद्वीप में, देखते हैं कि लक्ष्मी प्रिया अप्रकट हो गई, सची माता आदि अत्यधिक दुखी थे। तो कालांतर में चैतन्य महाप्रभु फिर से दूसरा विवाह करते हैं, और वो दूसरा विवाह विष्णु प्रिया से करते हैं। तो भगवान की ये शक्ति है, इसलिए शास्त्र कहते पराश शक्तिर विविदैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। चैतन्य महाप्रभु का विवाह विष्णु प्रिया देवी से होता है, और विष्णु प्रिया देवी भगवान की ये जगत उत्पत्ति या भू शक्ति है। और जो लक्ष्मी प्रिया है, जिनको कहा जाता है भगवान की श्री शक्ति है। और जो नवद्वीप धाम है, हाँ, वो लीला शक्ति का विस्तार है। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया से विवाह करते हैं और एक दिन गया के लिए जाते हैं अपने पिता का पिंडदान करने के लिए, और वहां केशव भारती से जब उनकी मुलाकात होती है, और केशव भारती से वो कृष्ण नाम की दीक्षा स्वीकार करते हैं। जब दीक्षा ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वापस आए नवद्वीप, तो उनमें पूर्ण रूप से बदलाव देखा गया। पहले वो बहुत अधिक अहंकारी थे, घमंडी थे, भक्ति आदि से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। लेकिन जैसे ही वहां से वापस आए गया से, उनमें परिवर्तन आ गया था। और वो परिवर्तन क्या था कि जो निमाई पंडित भक्तों की निंदा करते थे, भक्तों से दूर रहते थे, वही निमाई पंडित अभी भक्तों के भक्तों का भक्त बनना चाहते हैं। मतलब दासों का दास बनकर भक्तों की सेवा करने की कामना करते हैं और निरंतर कृष्ण के लिए रोया करते हैं। तो ऐसे निमाई पंडित जब कृष्ण के लिए रो रहे थे, कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए हाँ, भक्तों के संग में और समय में, समय के साथ साथ वो श्रीवास ठाकुर के आंगन में एक साल के लिए रात्रि कीर्तन शुरू करते हैं। और धीरे धीरे जब उनका अत्यधिक आकर्षण भक्तों का संग और कृष्ण नाम कीर्तन के लिए हुआ और वो निरंतर कृष्ण के लिए रोया करते थे, तो अचानक एक दिन जब निमाय पंडित अपने रूम में बैठे थे, तो उस समय एकांत में बैठकर वो जोर जोर से गोपी 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 का उच्चारण कर रहे थे। तो एक विद्यार्थी दूर से उनको देखता है, अरे ये कलयुग का धर्म तो कृष्ण नाम उच्चारण होना चाहिए, तुम ये गोपी गोपी क्या उच्चारण कर रहे हो? तो निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता है, वो उनके पीछे डंडा लेकर भागते उस विद्यार्थी के पीछे, और वो विद्यार्थी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते एक विद्यार्थियों का समूह था उसमें जाता है, तो सारे जो स्टूडेंट्स थे वो कहते हैं, निमाय पंडित समझता क्या है अपने आपको, हाँ यदि फिर से ये ऐसा बर्ताव करेगा तो हम सब मिलकर इसको मारेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, मैं तो इन सारे जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए आया हूं, और यदि ये जीव मुझसे ईर्ष्या करेंगे, मेरा अनादर करेंगे, तो शाश्वत रूप से ये नरक गामी बन जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को उस समय पहली बार एक विचार आया, और वो विचार क्या था, संन्यास ग्रहण करना चाहिए, मुझे संन्यास ग्रहण करना चाहिए, और संन्यास में ग्रहण करूंगा तो ये स्वाभाविक रूप से ये लोग मेरा आदर करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, और इतना करने मात्र से ही इस भौतिक संसार के क्लेशों से इनका उद्धार हो सकता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु हम बिल्कुल ठान लेते हैं संन्यास ग्रहण करने का। फिर आपने वो प्रमुख भक्तों को ये बात बताते हैं, और धीरे धीरे कुछ प्रमुख भक्तों में ये चर्चा शुरू होती है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने वाले हैं, निमाय पंडित अपना शिखा और सूत्र का त्याग करने वाले हैं। तो ये बात उनके घर तक पहुंचती है, सबसे पहले है सची माता, निमाय पंडित की जो माँ है, सची माता इसको सुनती है तो वो रोने लगती है। एक दिन निमाय पंडित को अपने सामने खड़ा करके सची माता पूछती है कि हे निमाय, क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हो? तो निमाय तो बात टाल रहे थे अपनी माँ से, तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित ने कहा कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कुछ समय बीतता है, तो एक दिन जिस दिन चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन संन्यास लेने के लिए नवद्वीप को हमेशा के लिए छोड़ने वाले थे, उसके एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए सारे नवद्वीप के अलग अलग भक्त आते हैं। सारे भक्त आकर कोई उनको माला लाता है, कोई उनके लिए अलग अलग गिफ्ट्स लाता है। शाम होती है, संध्या होती है, तो आखिरी में एक भक्त उनको मिलने आता है, और वो कौन थे, कोलावेचा श्रीधर। कोलावेचा श्रीधर जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए हैं, श्री श्री राधा गोविंद देव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री नित्य गौर सुंदर की, तो जब कोलावेचा श्रीधर उनको मिलने के लिए आए हैं, तो वो अपने साथ चैतन्य महाप्रभु के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, और वो तो बहुत ही गरीब थे, एक झोपड़ी में वो निवास करते थे, हाँ, जिसमें बारिश के दिनों में सारा पानी गिर जाता था। उनके घर में एक लोहा पात्र था जिसका इस्तेमाल वो सारे कार्यों के लिए करते थे। एक ही धोती उनके पास था जिसको हर रोज वो पहनते थे, जिसमें 17 छेद थे, लेकिन एक चीज की कमी नहीं थी उनके जीवन में, और वो क्या था, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जोर से हरे राम 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 हरे, तो निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। तो जब कोलावेचा श्रीधर उनके झोपड़ी के ऊपर उगा हुआ कद्दू एक पंपकिन लेके आते हैं चैतन्य महाप्रभु को मिलने, सबसे आखिरी गिफ्ट नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकारी उनसे, और उसी समय दूसरा एक भक्त दूध लेके आता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा विष्णु प्रिया को, है विष्णुप्रिया, इसका क्या बनाओ? एक स्वीट बनाओ। तो विष्णुप्रिया देवी हाँ जो कोला बेचा श्रीधर की जो प्रेममयी भेंट है उसे एक स्वीट बनाकर उसको स्वीकार करते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु अपने बेड पर जाकर लेटते हैं। तो ये जो विष्णु प्रिया थी कुछ दिनों से उसको हमेशा ये चिंता थी कि एक दिन मेरे जीवन से हमेशा के लिए हाँ मेरे पति निमाय पंडित मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। उसका विश्वास नहीं हो रहा था, रोज वो रो रहे थे, शरीर कंपित हो रहा था, लेकिन आज उसने निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए आज मैं इनसे पूछूंगी। तो विष्णुप्रिया देवी हाँ जब उनके रूम में आए, चैतन्य महाप्रभु का हाथ उन्होंने अपने सर पर रखा और कहा बताइए क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये किसने कहा मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूं, ये तो यहां वहां के लोग इधर उधर की बातें करते हैं, कैसे संभव है मैं आप जैसे सुंदर पत्नी को त्याग करो, मेरी अकेली जो माता है उसको छोड़कर जाओ, वो असंभव है। फिर महाप्रभु कहते सो जाओ, तो चैतन्य महाप्रभु सोते हैं लेकिन विष्णुप्रिया को नींद नहीं आती। मध्य रात्रि का समय होता है, विष्णुप्रिया देवी उठती है और फिर महाप्रभु का हाथ अपने छाती पर रखती है, चरणों को रखती है और उनको कहती है सच सच बताइए मुझसे सहा नहीं जा रहा है, क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ मैं क्या करने वाला हूं, कल ही मैं नवद्वीप का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने वाला हूं। ये सुनकर विष्णुप्रिया देवी क्रंदन करने लगती है। तो उस समय है चैतन्य महाप्रभु उनको लोचनदास ठाकुर अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल में इस लीला का वर्णन करते हैं। तो वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु विष्णुप्रिया देवी को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो उनको इस भौतिक जगत का जो दुखमय स्थिति है, अशाश्वतता है, भौतिक जगत के जो स्वार्थमय संबंध है उनके बारे में वर्णन करते हैं और दूसरी चीज वो बताते हैं कि हे विष्णुप्रिया तुम तो मेरे साथ इन लीलाओं में भाग लेने के लिए अवतरित हुई हो। और फिर उनको कहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी देखो इस संसार में हर चीज अशाश्वत है, लेकिन केवल दो ही चीजें ऐसी हैं जो शाश्वत हैं। और एक व्यक्ति को जो इस संसार में वास्तव में भगवान की ओर अग्रसर होना चाहता है उस व्यक्ति को इन दो शाश्वत चीजों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो विष्णुप्रिया देवी पूछते कि क्या है वो दो चीजें? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक है कृष्ण का पवित्र नाम, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरा है कृष्ण के भक्त। यदि इन दो चीजों का आश्रय ग्रहण करोगे तो ये सांसारिक बंधन नहीं रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठते और अपने घर से बाहर निकलते हैं। निकलते तो देखते तो क्या सची माता दरवाजे पर बैठी है, खड़ी थी और एक मूर्ति की भांति खड़े थे, उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रहे थे। महाप्रभु जाते हैं अपनी माता का माता को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके कटवा के लिए निकल जाते हैं केशव भारती से संन्यास ग्रहण करने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया कछवा में और उनका नया नामकरण हुआ श्री कृष्ण चैतन्य, और वो वापस जब शांतिपुर आए नित्यानंद प्रभु के साथ अद्वैताचार्य के घर में, तो आने से पूर्व ही चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को कहा था कि सारे नवद्वीप के भक्तों को बुलाओ लेकिन एक को छोड़कर, किसे छोड़कर? विष्णुप्रिया देवी, क्योंकि जो सन्यासी है उसे अपने पत्नी का मुख नहीं देखना चाहिए, ये सन्यास धर्म है और अपने गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु तो शांतिपुर में रहे और जब पता चला भक्तों को नवदीप के कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैताचार्य के ग्रह में है, तो सारे नवदीप के भक्त दौड़ते हुए वहां आए, सारा नवदीप खाली हो गया, लेकिन एक डिवोटी वहां थे। कौन थे वो? विष्णुप्रिया देवी, हाँ, जो उन महाप्रभु के घर के आंगन में एक गाय के समान जोर जोर से विलाप कर रहे थे। तो विष्णुप्रिया देवी के बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के विरह में उन्होंने ऐसे दिन बिताए कि सूर्य और चंद्रमा भी उन्हें देख नहीं पाते थे। विष्णुप्रिया देवी अर्ली मॉर्निंग में जाती थी, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके आती थी वापस, और घर में अंदर के कमरे में बैठकर निरंतर महाप्रभु के विरह में रोया करते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे। चैतन्य महाप्रभु की जो चरण कमल है, पादुकाएं हैं, उनको सामने रखते हुए और उसके सामने बैठकर निरंतर माला पर जप किया करते थे। जानवा माता के शिष्यक एक ग्रंथ में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति विष्णुप्रिया देवी के इस विरह भजन को सुनता है तो उसका हृदय भी द्रवित होने लगता है। वो अपने पास दो छोटे छोटे मटके रखते थे, एक में चावल हुआ करते थे और एक मटका खाली था। जैसे एक माला होती थी तो एक चावल का दाना उठाकर दूसरे मटके में डालते थे, और संध्या के समय तक जितने चावल हो जाते थे उतने चावलों को लेकर उसको पकाते थे और फिर चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाते थे और फिर उसे ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार का जो नाम भजन है वो विष्णुप्रिया देवी ने किया है, जो सबको प्रभावित करता है। तो ऐसे विष्णुप्रिया देवी जब चैतन्य महाप्रभु के विरह में अत्यधिक थे, तो एक दिन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जब नवदीप छोड़ा तो उनके बाद सची माता और विष्णुप्रिया देवी की सेवा करने के लिए बंसी मदन ठाकुर को नियुक्त किया गया था। तो बंसी मदन ठाकुर उनके घर के बाहर आंगन में सोया करते थे और सची माता और विष्णुप्रिया अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन स्वप्न में आते हैं, दोनों के स्वप्न में आते हैं, विष्णुप्रिया देवी के भी और आंगन में जो बैठ सो रहे थे बंसी मदन ठाकुर के भी। तो चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आकर कहते हैं कि हे बंसी मदन, तुम क्या करो, जिस नीम वृक्ष के नीचे मेरा जन्म हुआ है उस वृक्ष से मेरा विग्रह बनवाओ और उनकी हम पूजा कर सकती हैं विष्णुप्रिया। और अंदर विष्णुप्रिया को भी वही स्वप्न आता है और स्वप्न में वो उनको बताती हैं बंसी मदन ठाकुर को, और फिर चैतन्य महाप्रभु का विग्रह बनाया जाता है। और वास्तव में कहा जाता है कि वो पहला विग्रह है जिसकी पूजा एक प्रकार से शुरू होती है, और वो विग्रह हम नवदीप जाते हैं परिक्रमा में तो उनका दर्शन भी करते हैं, धामेश्वर महाप्रभु। तो विष्णुप्रिया देवी का आज आविर्भाव है, तो विष्णुप्रिया देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कृष्ण के नामों के प्रति थोड़ी सी आसक्ति हमारे हृदय में उदित हो। तो दूसरे आचार्य हैं रघुनंदन ठाकुर। तो रघुनंदन ठाकुर के पिता थे मुकुंद सरकार या मुकुंद ठाकुर, और मुकुंद के जो भाई थे वो थे नरहरि सरकार ठाकुर, जो हम रोज गाते हैं नरहरि आदि करे चामर जुलाए। तो ये तीनों ये दोनों भाई थे। तो ये तीनों का जो निवास था श्रीखंड, बंगाल में कटवा के पास ये गांव है श्रीखंड, जो वो वहां निवास करते थे। और मुकुंद वास्तव में वैद्य परिवार में थे, मतलब डॉक्टर फैमिली में थे, इनका जो जन्म है रघुनंदन ठाकुर का। तो चैतन्य महाप्रभु के ये तीनों भक्त अत्यधिक प्रिय थे। जब से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए, हर साल ये तीन भक्त अपना पूरा ग्रुप लेकर जगन्नाथपुरी उनका संग प्राप्त करने के लिए रथ यात्रा आदि के लिए जाया करते थे। तो ये जो रघुनंदन ठाकुर है, ये जब छोटे से बालक थे तभी से ही कृष्ण के प्रति उनका अत्यधिक लगाव या सेवा की भावना थी। वर्णन आता है कि जब रघुनंदन के जो पिता एक बार घर से बाहर जाते हैं तो रघुनंदन को कहते, बेटा आज गोपीनाथ को तुम भोग लगाओ, मैं नहीं रहूंगा या भोग लगाने के लिए। तो रघुनंदन ने तो कभी भोग लगाया नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने माता के पास जाकर कहा कि मुझे भोग की थाली दे दो, मैं गोपीनाथ को भोग लगाता हूं। तो जब उन्होंने गोपीनाथ को भोग लगाने के लिए थाली लेकर गए और गोपीनाथ के सामने रखी और उन्होंने कहा गोपीनाथ इसको खाओ इसको खाओ, तो गोपीनाथ तो रोज खाते नहीं थे, हाँ कहां से खाते हैं, वो आंखों से ग्रहण करते हैं। लेकिन रघुनंदन को लगा रोज मेरे पिता के हाथ से ये ग्रहण करते हैं, आज मुझे बालक समझकर मुझसे ये भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो रघुनंदन रोने लगते हैं। तो गोपीनाथ उनकी सरलता देखते हैं, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा सरलता ही वैष्णवता है। भक्ति में जीवन अत्यधिक कठिन होता है जब हमारे हृदय से सरलता लोप हो जाती है, सरलता के स्थान पर जब कपटता हृदय में आ जाती है तो भक्ति का हर अंग हमें महान तपस्या महसूस होती है, कष्ट महसूस होता है। भक्तिमय जीवन में आनंद हमारे जीवन से चला जाता है, केवल हम श्लोका उच्चारण कर सकते हैं आनंदामुदिवर्धनम सुसुखम कर्तुमावेयम, लेकिन वास्तव में आनंद की खोज में हम सब हैं। तो जैसे प्रभुपाद कहते चांट एंड बी हैप्पी, तो वो हैप्पीनेस महसूस नहीं होता, क्यों? क्योंकि कपटता ने आश्रय ग्रहण किया है हृदय में। तो इस बालक में सरलता थी रघुनंदन में, तो भगवान ने तुरंत उसको ग्रहण किया भोगा को और खा लिया। तो खाली प्लेट लेकर अपनी माँ को पकड़ाते हैं, तो इनके पिता मुकुंद जब वापस आए, वापस आकर जब पूछा रघुनंदन प्रसाद कहाँ है, या उनकी माता को भी पूछा, तो उन्होंने कहा रघुनंदन ने कहा है कि आज सारा भोग गोपीनाथ ने खा लिया है। हाँ, मुकुंद को लगा कि ये सब बच्चे मिलकर खा लिए होंगे, तो उस समय उन्होंने सोचा भी फिर से ट्राई करता हूं। तो मुकुंद ने अपने पुत्र रघुनंदन को लड्डू दे दिए, हाँ एक बर्तन में, और कहा जाओ भोग लगाओ। तो लड्डू लेकर ये सरलता से गए गोपीनाथ के सामने, तो मुकुंद एक खिड़की में खड़े होकर देख रहे थे कि बच्चा करता क्या है। तो गए गोपीनाथ के सामने और गोपीनाथ को कहा गोपीनाथ खाओ, तो गोपीनाथ तो टाइम नहीं लगाते, गोपीनाथ ने उठाया लड्डू, आधा खा लिया और आधा उनके हाथ में रखा। ये देखकर मुकुंद आश्चर्यचकित हो जाते खिड़की से, दौड़कर आते हैं और अपने पुत्र रघुनंदन का आलिंगन करते हैं, रोने लगते हैं। वो सोचते इतने साल मैंने बिताए, कभी गोपीनाथ ने मेरे हाथ से ग्रहण नहीं किया, लेकिन तुम्हारे हाथ से स्वीकार किया है। आज भी आप श्रीखंड जाते हैं, वैष्णव समाज में वर्णन आता है कि रघुनंदन ने खाया हुआ लड्डू, आज भी आप जाते हैं, मैं 3-4 बार वहां विजिट किया हूं, तो गोपीनाथ छोटे से विग्रह है, लेकिन आज भी उनके हाथ में क्या है, हाफ लड्डू है जो रघुनंदन की याद में है। तो आज भी वैष्णवगण श्रीखंड जाते हैं रघुनंदन की यह प्रिय विग्रह गोपीनाथ को देखने के लिए, कि उनके प्रेम के बंधन में उन्होंने लड्डू को स्वीकार किया है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, तो एक साल ये तीनों भक्त जब जगन्नाथपुरी पहुंचे और उनके सामने महाप्रभु के सामने गंभीरा में ये दो भक्त बैठे थे, मुकुंद सरकार और रघुनंदन, मुकुंद और नरहरि। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को पूछा, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, मुकुंद दासेर पूछे शचिर नंदन तुमे पिता पुत्र तो मां श्री रघुनंदन। तो मुकुंद दास को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे मुकुंद तुम पिता हो और ये जो रघुनंदन है वो तुम्हारा पुत्र है। केवा रघुनंदन पिता तुमे तारतनाय निश्चय करिया कह जावो का संशय। तो महाप्रभु ने कहा मुझे थोड़ा सा संशय है, डाउट है, तुम्हारा जो तुम्हारे वास्तव में, महाप्रभु ने कहा क्या तुम रघुनंदन के तनय हो, क्या रघुनंदन तुम्हारा पिता है क्या, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम पिता हो और वो पुत्र है या वो पुत्र है, आप क्या हो, वो पिता है और आप पुत्र हो। तो मुकुंद ने जब ये सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि महाप्रभु क्या पूछ रहे हैं। और महाप्रभु इसलिए ये पूछ रहे थे, महाप्रभु चाह रहे थे कि जो कृष्ण भक्ति की जो इम्पोर्टेंस है उसको स्थापित करना चाह रहे थे। तो मुकुंद ने जब ये सुना तो मुकुंद सरकार ने कहा, मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है, आमितार पुत्र यही अमार निश्चय। मुकुंद कहते हैं कि रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं। तो क्यों मुकुंद ऐसा कहते हैं? आमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन है ते, अतएव पिता रघुनंदन अमार निश्चित। क्योंकि इस रघुनंदन के कारण ही हम सबके पास क्या है? कृष्ण भक्ति है। इसी कारण से रघुनंदन वास्तव में पिता है और हम क्या है? पुत्र है। सुनि हर्ष कहे प्रभु कहे लनिचाय, जा है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। जब चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर सुना तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही सही है, वास्तव में जिसके पास भगवत भक्ति है वही गुरु है। चाहे वो आयु में छोटा हो बड़ा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने जो भक्त है उनका अपने मुखारविंद से गुणगान करते हैं। और तीसरे जो आचार्य हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में वर्णन आता है, कहा गया है कि विश्वनाथ, हाँ क्योंकि उनका नाम विश्वनाथ क्यों है? क्योंकि उन्होंने भक्तिमय जो ये पथ है उसको इस परंपरा में सबसे अधिक प्रकाशित किया। और भगवान जो विश्व के नाथ कहलाते हैं, जो सारे संसार का पालन पोषण करते हैं, उनके ही समान इन्होंने भी भगवत भक्ति को क्या किया है? सबके सामने प्रकाशित किया है, इसलिए उनको विश्वनाथ कहते हैं। और चक्रवर्ती इसलिए कहा गया है क्योंकि सारे समाज में, वैष्णव समाज में सर्वोच्च स्थान विश्वनाथ चक्रवर्ती को है, इसी कारण से उनको चक्रवर्ती उपाधि दी गई है। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बंगाल में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर वो राधारमन चक्रवर्ती उनसे दीक्षा और शिक्षा आदि प्राप्त करते हैं और गोस्वामियों के चरण चिन्हों पर चलकर वो वृंदावन आकर निवास करते हैं। वृंदावन में कई स्थानों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निवास किया और उनकी एक विशेषता रहे, उनकी सर्वोच्च देन इस गौड़िया संप्रदाय के लिए है। और वो क्या है? उनके जो बहुमूल्य ग्रंथ है, इतना एक भी ऐसा ग्रंथ गोस्वामियों का छोड़ा नहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि उन्होंने जिस पर टीका नहीं लिखी हो। चाहे वो भक्ति रसामृत सिंधु है तो उसके ऊपर एक छोटा बुक लिख दिया, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। तो ऐसे कई ग्रंथों की रचना की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विवाह हुआ था, लेकिन विवाह होते ही सबसे पहले अपने पत्नी को भागवतम पढ़ाया। भागवतम पढ़ाकर कहा, कृष्ण की सेवा ही तुम्हारा ध्येय होना चाहिए, तुम अपना जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित करो, ये सिखाकर कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और ब्रज में जाकर निवास करने लगे। और फिर वृंदावन में ही उन्होंने ग्रंथों की रचना की और एक महान शिष्य को इस संप्रदाय को भेंट रूप में प्रदान किया, और वो थे बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य हैं। और रोज वास्तव में हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को हमें स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उठते ही मंगल आरती में हम किसके द्वारा दिया हुआ गीत गाते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। हाँ, तो प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये जो 8 श्लोक दिया है उसके आखिरी श्लोक में वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन 8 श्लोकों का गुरु के प्रशंसा हेतु उच्चारित करता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उच्च स्वर में, निश्चित रूप से मृत्यु के समय में वृंदावन नाथ कृष्ण उसके हो जाएंगे, या वृंदावन नाथ जो कृष्ण है उनको प्राप्त करेंगे। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपना शरीर त्यागा था वृंदावन में राधा कुंड के तट पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के। तो और एक आचार्य हैं पुंडरीक विद्यानिधि, तो संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि वो आचार्य हैं जो वृंदावन लीला में वृषभानु महाराज थे। जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप में थे, श्रीवास ठाकुर के घर में जब कीर्तन कर रहे थे, तो अचानक एक दिन चैतन्य महाप्रभु रोने लगे और पृथ्वी पर गिर गिर कर पछाड़ खाकर वो बोलने लगे, पुंडरीक आरे मोर बापरे पंधुरे। वो कहते कि हे पुंडरीक, आप मेरे बाप हो, आप मेरे बंधु हो। तो महाप्रभु जब ये पुंडरीक पुंडरीक बोल रहे थे, फिर बोलने लगे विद्यानिधि। पहले तो पुंडरीक पुंडरीक बोलकर रो रहे थे, तो सबको लगा क्योंकि पुंडरीक कृष्ण का नाम है, तो उनको लगा कृष्ण को पुकार रहे हैं। लेकिन बाद में और एक शब्द जोड़ा विद्यानिधि, तो सबको लगा कोई भक्त हो सकता है। तो महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु जानते थे पुंडरीक विद्यानिधि जो चट्टग्राम, अभी आज बांग्लादेश में वो स्थान है, हाँ चट्टग्राम। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, उसी समय पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में इच्छा जागृत हुई थी कि मुझे नवदीप जाना चाहिए और गंगा के किनारे निवास करना चाहिए। उसी समय यहाँ नवदीप में महाप्रभु ने उनका स्मरण किया। भक्तों ने पूछा कौन है ये पुंडरीक, तो महाप्रभु उनके गुणों का गान करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये पुंडरीक विद्यानिधि, विद्यानिधि उपाधि वास्तव में महाप्रभु ने उनको एक उपाधि प्रदान की, वो थी प्रेम निधि, जो प्रेम के भंडार है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र अति विलक्षण है। कोई भी व्यक्ति पुंडरीक विद्यानिधि के नामों को स्मरण करता है या श्रवण करता है तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। बाहरी रूप से पुंडरीक विद्यानिधि वस्त्र आदि से लगता है कि बहुत अधिक क्या है, बहुत भोगी है, लेकिन वास्तव में महाप्रभु ने कहा उनका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से एक दिन पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप में आकर निवास करते हैं। तो गदाधर पंडित, मुकुंद दत्त और पुंडरीक विद्यानिधि, ये तीनों एक ही गांव में निवास करते थे। लेकिन गदाधर पंडित को कभी पता नहीं था कि सही में इतना उन्नत है पुंडरीक विद्यानिधि, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि सिल्क के कपड़े धारण करते थे और जब वो अपने बेड पर लेटते थे, सोफा सेट में या बैठते थे चेयर में, तो बहुत आलीशान चेयर हुआ करते थे। कुछ लोग उनको पंखा या मोरपंख से हवा डालते थे, हुक्का मुंह में लग के फूंकते थे और हमेशा पान, उनके मुंह में पान के लाली से उनके वो लाल रहते थे। साथ ही एक पिंगदान हुआ करता था, उसमें थूका करते थे। और मतलब इतना भौतिक ऐश्वर्य से वो भरे हुए थे, सर्वसाधारण व्यक्ति उन्हें देखेगा तो स्वाभाविक रूप से सोचेगा ये तो बहुत एक नंबर का भोगी है। तो लेकिन गदाधर ने कहा, चलो ऐसा वैष्णव जिसका महाप्रभु ने गुणगान किया है, जाकर उनको मिलते हैं, देखते हैं। तो गदाधर पंडित उनके साथ गए, मुकुंद दत्त के साथ। और मुकुंद दत्त के साथ गए तो ये सारी चीजें देखी, और गदाधर पंडित के हृदय में भावनाएं, कहां से ये भक्त को देखा, इनके बारे में बहुत कुछ सुना था, जैसा सुना था वैसा नहीं है। तो फिर चैतन्य मुकुंद दत्त ने सोचा कि इनके हृदय में पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति दुर्भावना उदित हो गई है। तो फिर मुकुंद दत्त ने एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक गाया, जिसमें कहा गया था कि कृष्ण कितने अधिक दयालु हैं कि जो पूतना उनको विष पान कराने आए थे, उसको भी भगवान ने माता का स्थान प्रदान किया अपने धाम में। जैसे ही श्लोक को सुना, पुंडरीक विद्यानिधि ने जो बड़े ऊंचे आसन पर बैठे थे आलिशान, वहां से गिर पड़ते हैं और गिरकर कृष्ण कृष्ण कहकर रोने लगते हैं। तो गदाधर पंडित समझ लेते हैं कि वास्तव में एक वैष्णव को उसके बाहरी हाव भाव से हम नहीं पहचान सकते, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। जो विज्ञ है, पंडित है, वो भी एक वैष्णव के कार्यकलापों को अपने भौतिक चमड़ी के आंखों से नहीं देख सकता। इसलिए शुद्ध भक्त की पहचान केवल शुद्ध भक्त कर सकता है। हम तो केवल जज कर सकते हैं और अपराध के भागी बनकर अपने भक्तिमय जीवन को नष्ट कर सकते हैं। तो गदाधर पंडित ने सोचा कि क्या करना चाहिए मुझे इससे मुक्त होने के लिए, इस अपराध से। उन्होंने सोचा उनसे दीक्षा ले लो। पुंडरिक विद्यानिधि से वो दीक्षा ग्रहण करते हैं गदाधर पंडित। और पुंडरिक विद्यानिधि बाद में जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं और उनके बेस्ट फ्रेंड बनते हैं स्वरूप दामोदर। तो एक दिन जगन्नाथ टेम्पल में विंटर के पहले दर्शन करने के लिए गए तो ओडन षष्ठी का दिन था। उस दिन भगवान को ठंड के कपड़े जगन्नाथ को पहनाते हैं पंडालों और उनके ऊपर वो माड़ होता है जिसको धोया नहीं जाता, वैसे पहनाते हैं। तो पुंडरिक विद्यानिधि जब दर्शन कर रहे थे, देखा ये पंडाल जगन्नाथ को माड़ के वस्त्र वैसे ही पहना रहे हैं, बल्कि वो अशुद्ध है, उनको धोकर पहनाना चाहिए। ऐसा उन्होंने सोचा, केवल पंडों के बारे में सोचा, कैसे ये डिवोटीज है पंडाल। और वो आ गए वापस अपने घर में। जब जगन्नाथपुरी में वापस आए तो रात को पुंडरिक विद्यानिधि जब सो रहे थे तो भगवान आ जाते हैं उनके स्वप्न में। हाँ, कौन आते हैं? सबसे पहले बलराम। बलराम और जगन्नाथ देव आते हैं, उनके छाती पर बैठते हैं और उनको मारना शुरू करते हैं। इतना मारते कि पुंडरिक विद्यानिधि सुबह जब उठे, स्वरूप दामोदर से मिलने गए तो देखा कि उनके जो दोनों गाल हैं वो फूले हुए हैं। स्वरूप दामोदर ने पूछा, पुंडरिक विद्यानिधि क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने कहा, मैंने कल जगन्नाथ के जो भक्त है उनके प्रति क्या किया था? अपराध किया था। तो ऐसी कई सारी लीलाएं हैं इन आचार्यों की। और आखिरी आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ इनके बारे में हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के लिए अत्यधिक पागल थे। अपने युवा अवस्था में ही वो अपने ग्रह का त्याग करना चाहते थे, बल्कि इतना अधिक ऐश्वर्य था। इसलिए श्रीनिवास आचार्य कहते, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। ये सारे मंडलपति थे, लेकिन तुच्छता के समान उन्होंने अपना धन ऐश्वर्य सब त्यागा केवल चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण की सेवा के लिए। जब उनके माँ ने कहा, बेटा भागता रहता है, उसको चैन से बांध के रखो घर में, तो उनके पिता कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति को दो चीजें बांध के रखती हैं। क्या है वो दो चीजें? एक है धन और दूसरा है श्री। कहते हैं इसके पास दोनों चीजें हैं। हाँ, इंद्र सम ऐश्वर्य श्री अप्सरा सम। इसके पास इंद्र के समान ऐश्वर्य है और इसकी पत्नी अप्सरा के समान है, लेकिन ये दोनों चीजें उसको बांध नहीं पा रही है। क्यों? हाँ, चैतन्य चंद्रेर बातुल हयाचे जहारे। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है। और जो व्यक्ति वास्तव में महाप्रभु के लिए पागल हो गया है, इस संसार में कोई भी वस्तु उसे बांध कर नहीं रख सकती। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़कर चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में मिलते हैं और महाप्रभु स्वरूप दामोदर के अंडर उनको रखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब अप्रकट हो गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस भावना से वृंदावन आते हैं कि गोवर्धन के ऊपर जाकर अपने देह का त्याग करो। तो रूप और सनातन गोस्वामी से मिलते हैं और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप चैतन्य लीला के स्टोर हाउस हो, आप जगन्नाथपुरी की सारी लीलाओं को जानते हो, तो आप क्या करो, राधा कुंड में निवास करो और वहां महाप्रभु का गुणगान करो। तो हर रोज रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य कथा या गौर कथा करते थे और सबसे आगे बैठकर कोई सुनते थे, वो कौन थे? कृष्णदास कविराज, अपने नोटबुक और पेन के साथ। और हमेशा लिखते थे, जब वृंदावन के वैष्णवों को महाप्रभु की परवर्ती लीला या जगन्नाथपुरी लीला सुनने की इच्छा हो गई, तो उन सबने कृष्णदास कविराज को अप्रोच किया, क्योंकि कृष्णदास कविराज ने रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना था और जिसके द्वारा उन्होंने एक अतुलनीय ग्रंथ हमें प्रदान किया, श्री चैतन्य चरितामृत। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य के भंडार है। कृष्णदास कविराज कहते हैं उनकी जो साधना है वो पत्थर के लकीर के समान है, हर रोज बहुत कठोर वो साधना करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आज इन महान आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव है, वास्तव में हमारे लिए फिस्ट है। तो हमें पर्सनली भी इन आचार्यों के बारे में पढ़ना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, भीख मांगनी चाहिए उनकी कृपा की, ताकि हम भी श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में कुछ सहयोग दे सके और अपना भक्तिमय पर्सनल जीवन भी पर्सनल जीवन में भी कुछ बदलाव ला सके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।